अनुभाग दो, भोजन कक्ष। उसका एक नाम था जो अंतर्राष्ट्रीय आराम जैसा सुनाई देता था, और फिर जैसे यहाँ के बहुत से नाम सिर्फ एक बहुत पुरानी चीज पर लगा हुआ लेबल था। खाने पर भूतल पर था, बड़े बड़े खिड़कियों के साथ जो बाहर उन घास के मैदानों की ओर खुलती थी, जो अब शीतकालीन सफेद नहीं बल्कि लगभग बेहया हरे हो गए थे। गोल्फ की पत्तरियां, प्रकृति का ये ज्यामितीय बुर्जुआ रूप, ऐसे चमक रही थी जैसे अभी अभी कंघी की गई हो। उनके पीछे गहरे चीड़ के पेड़ खड़े थे, और उनसे भी पीछे मानो ये सब सिर्फ एक मंच हो, पर्वतों की पृष्ठभूमि उठती थी नीली और धूसर तहों में बर्फ के साथ। बुफे हमेशा की तरह सजा हुआ था, सही सलामत, भरपूर उस नैतिक द्वैतता के साथ जो एक विलासी नाश्ता हमेशा बिखेरता है। ये एक उत्सव है और एक इकरारनामा भी साथ साथ। आदमी लेता है जैसे उसने इसे कमा लिया हो, और देखता है जैसे उसे अपने को सफाई देनी पड़े। यहां अंडे रखे थे, वहां सैल्मन, यहां रोटी, वहां फल, और सबके ऊपर कॉफी, मक्खन, और उस हल्के कभी पूरी तरह न निभाए गए वादे की गंध तैर रही थी कि यह दिन अच्छा होगा। हांस कास्टॉप ने, जैसा वह अब तक सीख चुका था, अपने लिए सब कुछ नहीं बल्कि सही चीजें ली। थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा वसा, सब्जियां, शायद एक मुट्ठी जामुन। उसने जैसे इस घर के बहुत से मेहमानों ने खाने की नैतिकता को भीतर उतार लिया था, वह अब भूख के हिसाब से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से खाता था, और ये अप्रसन्न करने वाली बात है, आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक, कि इस नैतिकता में ही एक नए तरह का डर पहचाना जा सकता है, शरीर से डर जिसने अपने को सजा सनवरा लिया है, जैसा उसने एक बार कहा था। उसने किनारे पर एक जगह ढूंढी, क्योंकि उसे किनारे पर बैठना पसंद था भले ही वह केंद्र में हो, और जैसे ही वह बैठा उसने एक आवाज सुनी जो उससे बोली, जो उससे नहीं पर निश्चित रूप से उस दोस्ताना और ऊर्जा से भरी मिलीजुली शैली के साथ जो उन लोगों में होती है जो संघर्षों में मध्यस्थता करने के आदि होते हैं। कैस्टॉर्प, उसने ऊपर देखा और फिलिप मॉर्गेनस्टर्न को देखा। मॉर्गेनस्टर्न उसकी ओर आया और उसके पीछे, और ये नया था, दो छोटी आकृतियां आ रही थी जो उसकी जैकेट से चिपकी हुई थी, और उसके बगल में एक औरत चल रही थी जिसका चेहरा एक साथ थका हुआ और सुंदर था, जैसा वे चेहरे होते हैं जो नींद की कमी से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से थकते हैं। ये मेरी पत्नी है, मॉर्गेनस्टर्न ने कहा, और जिस ढंग से उसने मेरी पत्नी कहा उसमें कुछ ऐसा था जिसने हांस कास्टॉर्प को, जो बीच बीच के स्थानों का आदमी था, एक साथ छुआ भी और चुभोया भी। संरक्षण, सहजता और प्रतिबद्धता, सब दो शब्दों में। औरत ने शिष्टता से मुस्कुराया, उसकी आंखें साफ थी और उनमें वो तरह की चौकसी थी जो अविश्वास नहीं बल्कि देखभाल होती है। उसने हांस कास्टॉर्प की ओर हाथ बढ़ाया। गुटेन मॉर्गन, उसने कहा। गुटेन मॉर्गन, हांस कास्टॉर्प ने कहा, और महसूस किया कि उसकी शिष्टता अचानक एक और रंग ले रही है। ये अजीब है, आदमी होटलों में 100 हाथ मिला सकता है और वे होटल की चादरों की तरह साफ और अर्थहीन बने रहते हैं, और फिर एक हाथ आता है जो मेहमान नहीं बल्कि जिंदगी होता है, और अचानक आदमी फिर से एक इंसान बन जाता है जो गलतियां कर सकता है। दोनों लड़कियां, वे 6 और 9 की रही होंगी या 7 और 10। बच्चों की होटलों में एक अलग समय गणना होती है, वे हमेशा छोटे होते हैं और फिर भी हमेशा पहले से बड़े। उसे देख रही थी, पहले झिझकते हुए फिर जिज्ञासा पूर्वक। ये हांस है, मॉर्गेनस्टर्न ने कहा, और उसने ये ऐसे कहा मानो हांस एक दोस्त हो, सिर्फ एक सह मेहमान नहीं, पापा का दोस्त। बड़ी लड़की ने सिर हिलाया जैसे उसने इसे एक छोटे प्रोटोकॉल की तरह संज्ञान में लिया हो। छोटी आधी मां की टांग के पीछे छिप गई और झांकने लगी। हमने कहा है हम नाश्ते के बाद बाहर जाएंगे, मॉर्गेनस्टर्न ने हांस से कहा, जबकि वे मेज के चारों ओर अपने आप को सजा रहे थे, मानो अचानक भोजन कक्ष के बीचों बीच एक छोटी निजी व्यवस्था बन रही हो। तुम तो साथ आओगे ना, और हेयर डॉक्टर, उसने हाथ से एक अनिश्चित सी हरकत की मानो डॉक्टर AUHS को निमंत्रित नहीं करना पड़े बल्कि सिर्फ अनुमति देनी पड़े। वो भी आएंगे, हांस डेस्टॉप ने सिर हिलाया और उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि वो क्यों सिर हिला रहा था, क्योंकि वो पारिवारिक सैर सपाटों का आदमी नहीं था, बच्चों की आवाजों का आदमी नहीं था, छोटी जैकेटों और पानी की बोतलों का आदमी नहीं था। लेकिन उसने सिर हिलाया क्योंकि इस सिर हिलाने में कुछ ऐसा था जिसे उसने कम ही अभ्यास किया था। सहभागिता। वे बैठ गए। मां, फ्राउ मॉर्गेनस्टर्न ने छोटे बच्चे की गोद से वो नैपकिन निकाली जिसे उसने पहले ही मरोड़कर गोद में रख लिया था, उसे सीधा किया और इस छोटी सी हरकत में धैर्य की पूरी एक दुनिया थी। मॉर्गेनस्टर्न ने कॉफी मंगाई, बच्चे के लिए कोको के बारे में पूछा। कोको, ये शब्द जिसे हांस कैस्टॉप ने वाल्पुर्गिस नाइट के बाद से नहीं सुना था, बिना सर्दियों की धूप और मार्शमेलोज के बारे में सोचे। और फिर जैसे ही कप रखे गए, उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और कुछ बाहर निकाला। वो कोई यंत्र नहीं था, कोई अंगूठी नहीं, कोई कफलिंक नहीं। हां, मैं इसे साथ लाया हूं, उसने कहा, और उसने ये एक ऐसे मिश्रण के साथ कहा जिसमें गर्व भी था और शर्म भी, जैसे कोई उस चीज के बारे में बोलता है जिसे वो गंभीरता से लेता है पर डरता है कि दूसरे उसे हास्यास्पद समझेंगे। हांस कैस्टॉप ने कागज की ओर देखा, वो तह किया हुआ था, थोड़ा खिसा पिटा और उस पर साफ सुथरी लिखावट में पांच शब्द लिखे थे, एक के नीचे एक, हर एक के साथ एक बिंदु, मानो वो अपने आप में एक वाक्य हो। फ्राउ मॉर्गेनस्टर्न ने उसे देखा और न तो आह भरी न ही व्यंग्य से मुस्कुराई, उसने बस बहुत हल्के से सिर हिलाया। यही था आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक, शायद सबसे चौंकाने वाला कि ऐसी सूची किसी विवाह में अपने आप हास्यास्पद नहीं होती, बल्कि अगर उसे गंभीरता से लिया जाए विनम्रता का एक रूप होती है। सम्मान, हांस कैस्टॉप ने धीरे से पढ़ा। सहानुभूति, मॉर्गेनस्टर्न ने कहा। जिम्मेदारी, फ्राउ मॉर्गेनस्टर्न ने कहा लगभग एक पूरक की तरह, मानो वो दिखाना चाहती हो, मैंने इसे सुना है और मैं तुम्हें इसकी याद दिलाऊंगी बिना तुम्हें अपमानित किए। सुरक्षा, मॉर्गेनस्टर्न ने कहा और इस दौरान अपनी दोनों बच्चों को देखा, मानो ये शब्द अमूर्त नहीं बल्कि देहधारी हो। साझेदारी, उसने आखिर में कहा और ये ऐसा लगा मानो इस लंबे शब्द को खास एहतियात से बोलना पड़े ताकि वो हवा में टूट ना जाए। हांस कैस्टॉप चुप रहा, न समझ न आने के कारण बल्कि एक ऐसे एहसास से जिसे वो नाम नहीं दे सकता था, एक तरह की टोनियो जैसी उदासी, क्योंकि टोनियो अगर हम उसे आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक इस दृश्य में बुलाने की इजाजत ले, यद्यपि वो यहां नहीं है, ठीक ऐसे ही चुप रहता, प्रशंसा के साथ और दर्द के साथ, उस बुर्जुआ रूप के लिए प्रशंसा जो अपने आप को नैतिकता के रूप में छुपा लेता है, इस बात पर दर्द कि आदमी खुद पूरी तरह उसका हिस्सा नहीं है, भले ही वो मेज पर बैठा हो। मेरे भीतर जौंके हैं, मॉर्गेनस्टर्न ने कहा, और अब उसकी आवाज धीमी हो गई, लगभग निजी, हालांकि वे भोजन कक्ष में बैठे थे जैम के जारों और प्रोइसां के बीच। यानी वे चीजें जो मैंने की है ये, वो एक ऐसे शब्द की तलाश कर रहा था जो ज्यादा कठोर ना लगे, चुभने, व्यंग्य, हमेशा सही होना चाहना, मैंने इन्हें, उसने कागज पर उंगली से ठोका, एड्रेस किया है। फ्राउ मॉर्गेनस्टर्न ने थोड़ी देर के लिए अपना हाथ उसके निचले बाह पर रखा, एक सेकंड, कोई भावुकता नहीं, साझेदारी की एक ऐसी भंगिमा जो टीम नहीं कहती बल्कि टीम होती है। लेकिन बाहर, मॉर्गेनस्टर्न ने आगे कहा, बाहर अभी भी कुछ है। उसने आंखें उठाई, हांस कैस्टॉप की ओर देखा, नजर में ये विनती थी कि उसे समझा जाए बिना की बात को नाटकीय बनाया जाए। लोग जो, उसने एक हरकत की जैसे कुछ उस पर लटका हो, जो मेरी भलमनसाहत का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, और मैं इसे महसूस करता हूं और फिर मैं तर्क करने लगता हूं और फिर मैं वो हल्का सा कड़वाहट से हंसा बाघ बन जाता हूं। हांस कैस्टॉर्प ने दंतकथा के बारे में सोचा, गधे, बाघ, शेर के बारे में। उसने सोचा कि डॉक्टर ऑडीएचएस ने कैसे कहा था, किसी गधे से बहस करना अलौकिक है और शेर को इससे परेशान करना उससे भी ज्यादा अलौकिक। उसने ये भी सोचा कि ये दंतकथा कितनी आधुनिक है, मन की ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर एक छोटा सा पाठ। और अब मॉर्गनस्टर्न ने कहा, मैं अब बाघ नहीं बनना चाहता और मैं अब गधा नहीं बनना चाहता। मैं, उसने सूची की ओर देखा, मानो वो एक रेलिंग हो। मैं बस, वो फिर हंसा, इस बार लगभग संकोच से, मैं सामान्य होना चाहता हूं। सामान्य, ये शब्द आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक, ज़ाउबरबर्ग संदर्भ में हमेशा एक खतरनाक शब्द रहा है, क्योंकि वहां सामान्य या तो घाटी है और घाटी युद्ध है, या वो एक भ्रम है जिसे आदमी तब तक बर्दाश्त करता है जब तक वो ऊपर है। यहां ज़ोनन अल्प पर सामान्य फिर से एक मार्केटिंग शब्द है, सामान्य मान, सामान्य क्षेत्र, सामान्य ऊंचा। और फिर भी मॉर्गनस्टर्न कुछ और कहना चाहता था, अच्छाई की सामान्यता, सम्मान की सामान्यता, ऐसे विवाह की सामान्यता जो लगातार खून नहीं बहाता। हांस कैस्टॉर्प ने सिर हिलाया और उसे फिर से ठीक ठीक पता नहीं था कि वो क्यों सिर हिला रहा था, शायद इसलिए कि वो भी ये चाहता था बिना इसे चाहने के। तभी डॉक्टर ऑडियजस आया।